मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत कल के ही करंट विषय को लूंगा और कैसे उस विषय को विस्तार देकर के हम उस पर विचार कर सकते हैं और करना चाहिए, इस पर बातें करूंगा। लेकिन उससे पहले आइए एक दो जो दूसरी सूचनाएं और खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। मेरे पास कुछ मेल्स आए हैं, कई दिनों से मेल्स आ रहे हैं। इनफैक्ट आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि G20 की जो बैठक है वो हमारे देश के कई अलग अलग शहरों में हो रही है। इसको लेकर के आप लोगों के दिमाग में शायद एक भ्रम की स्थिति है, उसे मैं यहां स्पष्ट करना चाह रहा हूं। मुझसे पूछा गया है कि सर, ये अलग अलग शहरों में जो बैठकें हो रही हैं, जिन विषयों पर हो रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, क्या हमें इन पर ध्यान देना चाहिए, इन पर नोट्स बनाना चाहिए? इसके बारे में देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से जो मैं समझता हूं और शायद बहुत गलत नहीं समझ रहा हूं कि आपको पढ़ना तो है, पढ़ना इसलिए है कि आपको यह पता लग सकेगा कि जो G20 के देश हैं, और G20 आप जानते हैं कि कितना बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, बहुत ही शक्तिशाली संगठन है, उनकी चिंताएं क्या हैं, तो आपको विश्व की चिंताओं का पता लग सकेगा, तो आपको विश्व की चिंताओं की जानकारी हो सकेगी, समस्याएं क्या चल रही हैं आप उनके बारे में समझ सकेंगे, और नो डाउट अपने देश के बारे में भी जान सकेंगे कि भारत किस दिशा में काम करना चाह रहा है, उसके लिए क्या कदम उठाने के बारे में सोच रहा है, विश्व की सोच क्या बन रही है। बस केवल इतना ही, बस केवल इतना ही, मैं तीसरी बार कह रहा हूं, बस केवल इतना ही। आपको कहीं नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको कोई पॉइंट्स नोट नहीं करने हैं, आपको इस पर बेस्ड कोई क्लिपिंग्स काट करके और अपने पास नहीं रखनी है, नथिंग। बस आप केवल पढ़ते जाइए, जैसे आप म्यूजिक का आनंद लेते हैं, बस आनंद लेते जाइए। ये आपको एनरिच करेंगे, आपको समृद्ध बनाएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे कि कुएं में पानी कहां से आता है आपको नहीं पता लगता, लेकिन कुएं में पानी आता रहता है। तो ये जो नॉलेज है ये धीरे धीरे आपके अंदर समाती चली जाएगी और आप समृद्ध होते चले जाएंगे। मुझे लगता है कि इतना ही आपके लिए कम से कम इस टॉपिक पर तो पर्याप्त होगा। दोस्तों, कल हमारे जो वित्त मंत्री हैं उनका न्यूज चैनल पर एक इंटरव्यू आ रहा था, वो इंटरव्यू मैंने सुना और उसमें मुझे एक बात महत्वपूर्ण लगी कि हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि खासकर जो हमारे सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग हैं, इनके लिए 2,00,000 करोड़ रुपए के ऋण की व्यवस्था की गई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऋण की व्यवस्था बिना गारंटी के की गई, कि उन्हें इसके लिए कोई गारंटी नहीं देना पड़ेगा। आज के अखबारों में एक सर्वे आया है कंसोर्टियम ऑफ इंडियन एसोसिएशंस का, संगठन का नाम आपको जानना जरूरी नहीं है। उसमें उन्होंने अपने सर्वे के आधार पर बताया है कि 72% जो खासकर ये लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग के उद्योगपति हैं, उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में उनका जो कारोबार है, उनका जो बिजनेस है, या तो गिरा है या बिल्कुल स्थिर रहा है, ये उनका कहना है। इसका मतलब है कि ये जो क्षेत्र है, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग का जो क्षेत्र है, जो हमारे यहां रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन है, लगभग 12 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनकी स्थिति खराब है। बीच बीच में अखबारों में आपको पढ़ने को मिलता भी होगा कि सरकार इनको लेकर के बहुत चिंतित है, क्योंकि इनके कारोबार में लगातार गिरावट आती चली जा रही है। तो अभी 2,00,000 करोड़ रुपए बिना गारंटी के जो लोन देने की बात कही गई है, वो कहीं न कहीं इनके मदद के लिए ही है, क्योंकि यदि ये कमजोर हुए, ये बंद हुए, घाटे में रहे, तो आप सोचिए कि बेरोजगारी की स्थिति का क्या हाल होगा। खासकर कोरोना के बाद इनके सामने बहुत बड़ा संकट उठ खड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन कोरोना ने भी इन्हें बहुत ज्यादा मात दी है। जो 4-5 जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण इस सर्वे में जो बताए गए हैं, मैं उन्हें केवल आपके सामने रख रहा हूं, बस उतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा कि ये किस संकट से जूझ रहे हैं। जो पहला जो संकट है वो ये है कि बैंक से लोन मिलना इनके लिए अब भी बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए आपने देखा ना, बिना गारंटी के लोन, क्योंकि इनके पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं होती जिसके अगेंस्ट बैंक लोन दे, और लोन फ्री नहीं मिल नहीं पाता है। अगर आपको लोन नहीं मिल पाएगा तो आप अपने उद्योग को कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, तो ये बहुत बड़ा संकट है। दूसरा, इन्होंने बताया कि धीरे धीरे इनका जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो कम होता जा रहा है, मतलब जो लाभ का जो प्रतिशत है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। ये कॉम्पिटिशन की वजह से हो रहा है, जो बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं जिनके पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, तो डेफिनेटली उनकी जो लागत आती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो अपेक्षाकृत कम होता है। अब उनको कॉम्पीट कर पाना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, दूसरा कारण। जो तीसरा कारण है, जो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, वो यह है कि एक तो जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया है, और दूसरा यह है कि उनकी सप्लाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है ना, जिसे आप पढ़ते हैं ना अखबारों में कि सप्लाई चेन बाधित हो रही है। मान लीजिए कि चाइना से कोई सामान आ रहा है या रशिया से कोई सामान आना है, तो युद्ध के कारण वो बाधित हो रही है, तो सामान भी कम पहुंच रहा है और युद्ध के कारण महंगाई भी बढ़ गई, और कोरोना के बाद जो विश्व में महंगाई की स्थिति है उसे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये तीसरा बहुत बड़ा कारण है। और चौथा कारण इन्होंने बताया कि जब ये कहीं सामान भेजते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उनका पेमेंट इनको देरी से मिलता है, मार्जिन जो है प्रॉफिट का वो कम हो गया है, तो ऐसे में पता लगा कि जो थोड़ा बहुत उनका प्रॉफिट था वो ब्याज में खत्म हो गया, तो स्वाभाविक है कि फिर या तो स्थिरता पे रहेंगे या फिर गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा, तो पेमेंट में भी जो इनको देरी होती है मिलने में, वह भी इनके सामने एक बड़े संकट का रूप ले चुका है। तो ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, इन्हें आप बस अपने दिमाग में रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि हो सकता है इस बार के मेंस में इस पर पूछ भी लिया जाए। दोस्तों अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। मुख्य विषय के लिए मैंने आज जो न्यूज चुनी है और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है वो है कि एक स्टेटमेंट आया है पांचजन्य अखबार में, कि स्टेटमेंट नहीं कहना चाहिए, उसका जो एडिटोरियल लिखा गया है उसमें एक बात कही गई है कि ये जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसका जो इस्तेमाल है देश विरोधी ताकतें एक औजार के रूप में कर रही हैं। ये बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और सच पूछिए तो बहुत गंभीर स्टेटमेंट है। गंभीर इस मायने में कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति संदेह व्यक्त हो रहा है, और चिंताजनक इस मायने में कि अपने देश की सुरक्षा के प्रति कहीं ना कहीं चिंता पैदा हो रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा, और वो भी विरोधी ताकतों के जरिए, चाहे वो हमारे राष्ट्र के अंदर बैठी हुई विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो विश्व की विरोधी ताकतें हों जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, तो डेफिनेटली ये कोई सामान्य सा स्टेटमेंट नहीं है। दरअसल एक साप्ताहिक पत्रिका है पांचजन्य, बहुत समय से ये छप रही है, इसे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है आरएसएस उससे जुड़ी हुई पत्रिका माना जाता है, उसके एडिटोरियल में ये प्रश्न उठाया गया है। अपनी बात रखने के लिए उन्होंने कुछ तथ्य दिए हैं जिनको लेकर के पहले भी इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं थी, लेकिन जब अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसमें आ गया। जैसे मानवाधिकार के नाम पर आतंकवादियों को बचाना या उनका फेवर लेना, जैसे आप आतंकवादियों पर अगर कुछ आप कड़ाई कर रहे हैं तो ये होगा कि नहीं ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। ठीक इसी तरह से पर्यावरण के नाम पर विकास के कामों में रुकावट डालना, जैसे कहीं बांध बनना है तो उसके लिए पेड़ काटे जाने हैं तो पता लगा कि आप पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उस पर बांध नहीं बना सकेंगे नदी पर, और जब बांध नहीं बना सकेंगे तो सीधी सी बात है कि फिर विकास का काम रुकेगा, गांव डूब जाएंगे, तो इस तरह की बातें पहले भी की जाती रही हैं। अभी जो बात कही जा रही है अब हम उस पर आते हैं। अभी एक फिल्म आई है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, अखबारों में आपने पढ़ा होगा द मोदी क्वेश्चन, खासकर 2002 के गुजरात दंगों पर यह आधारित है। आपको मालूम होगा कि इस पर बहुत केस भी चले, और केस चलने के बाद बकायदे न्यायालय ने मोदी जी को, जो उस समय वहां के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको आप दोष मुक्त कर दिया है, मान लिया है, तो न्यायिक दृष्टि से तो बात खत्म हो गई है, और सीधी सी बात है कि हम न्यायालय की बात को मानते हैं, लेकिन इसमें फिर से कुछ प्रश्न इस तरीके के उठाए गए हैं। तो जब बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री आई तो बकायदे भारत सरकार ने इसका विरोध भी किया, देश के कुछ दूसरे लोगों ने भी इसका विरोध किया, और सरकार ने फिर इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया, और यहां तक कि फिर जब फिर ये कुछ यूट्यूब वगैरह पर आने लगे तो सरकार ने उन्हें भी बैन कर दिया। तो हमारे देश में ये पूरी तरह से बैन है, और ये जो बैन सरकार ने लगाया है इसी के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका किस आधार पर दायर की गई होगी आप अनुमान लगा सकते हैं, जो बिल्कुल सही होना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि भाई फिल्म एक अभिव्यक्ति का माध्यम है और आप उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो जो लोकतंत्र है वो तो बेसिकली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही टिकी हुई है, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार किया, सरकार से अब उसने जवाब मांगा है, अब इस पर सुनवाई होगी और फिर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। आपने देखा कि कैसे अब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल हो गई है, तो इसी को बेस बना करके ये एडिटोरियल लिखा गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पर बकायदे यूपीएससी के जो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि चूंकि प्रधानमंत्री से संबंधित मामला है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित मामला है, चूंकि देश के विरोध से संबंधित मामला है, तो नहीं, इस पर तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मान के चलिए कि अगर यूपीएससी इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछ रही है तो यही यूपीएससी इस बार के मेंस में भी ये प्रश्न पूछ सकती है, उसमें क्या दिक्कत है, है ना? निष्कर्ष कोई ऐसा थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है तो कोई बिल्कुल निष्कर्ष ही निकाल लें आप। अभी तो सुनवाई होगी, ढेर सारे फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे, आप उन पर विचार कीजिए। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं विचार करने के अंतर्गत, कि अब आप केवल इस घटना को लेकर के अलग अलग एंगल से सोचने की कोशिश कीजिए। जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि लोगों के बोलने की आजादी हो, और लोगों की बोलने की आजादी को जब हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं तो प्रेस के फ्रीडम से ले लेते हैं, है ना? अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज चैनल्स, इनको पूरी तरह से स्वतंत्रता मिले। लेकिन दोस्तों, क्या सच में बोलने की आजादी यहीं तक सीमित है? क्या इसे एक्सटेंड किया जा सकता है? आप इस पर विचार करके देखिएगा, और आपको इस पर विचार करना चाहिए, तब आपको जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उनके नए नए क्षेत्र दिखाई देंगे, नए नए क्षेत्र दिख, अच्छा ये भी तो बोलने की आजादी से ही संबंधित है, ये भी बोलने की ही आजादी से संबंधित है, ये भी तो बोलने के ही आजादी से संबंधित है। इस तरह से बातें आपको दिखाई देंगी, चीजें आपको समझ में आएंगी। इस पर आप विचार करें, दो दिन का वक्त है, इस पर सोचें, और आपको सोचना ही चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, निधि विश्वकर्मा कानपुर से, गीतिका उपाध्याय और रविराज, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और विषयों पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, नमस्कार।